الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظیم. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشید. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آج کی اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے اللہ تعالی کا رنگ. یہ ایک بالکل نیا موضوع ہے اور آپ بڑی توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا, اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے, اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں. یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر آیت کا ایک شان نزول ہے. قرآن کریم میں جتنی آیتیں ہیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت نازل ہوئیں, احکامات سمجھانے کے لیے, کسی واقعے کو بتانے کے لیے, یا کسی بھی صورت میں وہ آیت بینات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اس آیت کا شان نزول یہ ہے, یہودیوں کی ایک رسم تھی کہ جب کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تھا وہ اسے رنگ دار پانی میں غسل دیتے تھے اور کہتے تھے یہ اب ہمارے دین میں داخل ہو گیا, یعنی ہمارے دین کا رنگ اس پر چڑھ گیا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس نو مولود بچے کو زرد رنگ کے پانی میں غسل دیتے تھے اور اس پر رنگ چھڑکتے بھی تھے, یہ ہمارے دین میں داخل ہو گیا. پھر یہ رسم آگے بڑھی تو عیسائیوں نے بھی اس رسم کو اپنا لیا, وہ بھی یہی کرنے لگے. تب خالق کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. ان سے کہہ دو کہ اللہ کا رنگ ہم پر چڑھا ہوا. ومن احسن من اللہ صبغۃ, اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے. اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ خوبصورت. ونحن لہ عابدون, اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں. خالق کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس طرح رنگ دار پانی میں غسل دینے سے رنگ نہیں چڑھتا, وہ تو رنگ اتر جائے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, کوئی رنگ دار پانی سے آپ غسل کر لیں, آپ کے اوپر وہ رنگ آ گیا, کچھ دیر کے بعد ختم ہو. جب صاف پانی سے غسل کیا وہ اتر گیا. کسی بھی رنگ کو پانی میں ڈال کر غسل کر لیں, ایسا نہیں کہ وہ رنگ ہمیشہ رہے گا, اتر جائے گا. چند گھنٹوں بعد, چند دنوں بعد, چند مہینوں بعد, کوئی بہت ہی پکا رنگ ہو وہ پھر بھی چند مہینوں میں سالوں میں اتر جائے گا. قرآن یہ بتا رہا ہے سب سے اچھا رنگ, سب سے خوبصورت رنگ اور نہ اترنے والا رنگ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو جو اترے ہی نہیں. یہ تم نے کون سا طریقہ بنا لیا کہ کوئی دین میں داخل ہوا اس کو رنگدار پانی میں غسل دے دیا, کوئی بچہ پیدا ہوا اس کو رنگدار پانی میں غسل دے دیا, یہ جی اس پہ ہمارا رنگ چڑھ گیا, اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا, اس پہ یہودیت کا رنگ چڑھ گیا. اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ کا رنگ ہے کیا, صبغۃ اللہ سے مراد کیا ہے. کہتے ہیں اللہ کا رنگ, ومن احسن من اللہ صبغۃ, اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے. تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کا رنگ کون سا ہے کہ جو ہم اپنے اوپر چڑھائیں اور وہ نہ اترنے والا ہو. कितना ही गुसल कर ले, कितना ही कुछ कर ले, सारी उम्र गुजर जाए, वो रंग ना उतरे, वो रंग है कौन सा, इस पे हमें गुफ्तगू करनी। उससे पहले चंद तमहीदी कलिमात ताकि बात आपके समझ में आ जाए। इस पूरी कायनात का आप जायजा लें, अल्लाह ताला ने बेशुमार रंग पैदा की। ये पूरी कायनात जो है ना, ये रंगों का मजमुआ है। आप सिर्फ फूलों को देख लें, कितने रंग के फूल हैं, सफेद हैं, काले हैं, लाल हैं, पीले हैं, ऊदे हैं, नीले हैं, सारे रंग के फूल, ये सब उसकी कुदरत है। पूरी कायनात का जायजा लें, रंग होने में भी हिकमत है और रंग ना होने में भी हिकमत, दोनों में हिकमत। जिन चीजों को अल्लाह ताला ने रंग दिया है उसमें भी हिकमत, और जिन चीजों को बेरंग रखा है उसमें भी हिकमत। अब कौन सी चीजें हैं जो रंगदार हैं और कौन सी चीजें जो बेरंग हैं? जब हम कायनात का मुशाहिदा करते हैं, जायजा लेते हैं, हर चीज हमें रंगदार नजर आती, कोई ना कोई रंग। इंसानों में आप देख लें, कोई काला है, कोई पीला, कोई सफेद है, कोई गंदमी रंग का है, मुख्तलिफ रंग। और इसकी वजह यह है कि मट्टी का रंग मुख्तलिफ है, इसीलिए औलाद आदम का रंग भी मुख्तलिफ है। मट्टी की सिफात मुख्तलिफ हैं, औलाद आदम की सिफात भी मुख्तलिफ। अब बाद मट्टी ऐसी होती है, असल में हमारा ये जिस्म जो है ना मट्टी से बना, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक तैयार किया गया तो रूए जमीन से मट्टी ली गई, और मट्टी मुख्तलिफ रंग की है, मुख्तलिफ खासियत रखती है, सिफात रखती है। कुछ मट्टी ऐसी होती है, आपने जरा सा बीज डाला, फौरन सरसब्ज शादाब, घास निकल आई, पौधा निकल आया, जरा सी मेहनत की एकदम। और कुछ कितनी ही मेहनत करो, कितना ही हल जोतो, कितने ही बीज डालो, खाद डालो, असर नहीं, असर नहीं। यही औलाद आदम का हाल, किसी को जरा सा समझाओ वो फौरन समझ जाएगा, और किसी को पूरी कहानी सुना दो समझ में नहीं आएगा। सारी उम्र बताते रहो, समझाते रहो, दिखाते रहो, वहीं का वहीं। ये वही मट्टी की खासियत। तो मट्टी का रंग मुख्तलिफ है, औलाद आदम का रंग भी मुख्तलिफ है। कायनात में दो चीजें हैं जो बेरंग हैं, कोई रंग नहीं, और उनका रंग ना होने में भी हिकमत है, एक हवा और एक पानी। रंग है इसका, और अगर होता तब, मतलब हवा का रंग पीला होता तो सब पीले ही नजर आते, देख लेना आप, हवा तो हर जगह है ना। अच्छा, हवा से हम सांस लेते हैं, मुंह से जाती है, नाक से बाहर आती है, नाक से जाती है, मुंह से, सब सांस ले रहे हैं, सबका नाक मुंह पीला देखते नजर आता ना, पीली चीज अंदर जा रही है, बाहर आ रही। नीला होता तो नीली, लाल होता तो और खतरनाक हो जाता कि लाल चीज अंदर जा रही है वो फिर बाहर आ रही है। अल्लाह ने रंग ही नहीं रखा, बेरंग। दूसरी चीज पानी, पानी का रंग नहीं। आप देख लें हाथ में, नहीं वैसे समंदर में नजर आएगा कि जैसे ये मटियाले रंग का है, लेकिन जब हाथ में उठाया कोई रंग। इसमें भी हिकमत, अगर शीशे के गिलास में पानी होता पीला पीला नजर आता, जैसे होता है ना अक्सर पानी गदला होता है तो नजर आ जाता है, कहते इसमें मट्टी है, ये पानी साफ नहीं है। लाल होता तो समझते शरबत है, काला होता तो और खतरनाक है, पता नहीं क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है, नजर ही नहीं आ रहा। इसी हिकमत के तहत खालिके कायनात ने पानी का रंग ही नहीं रखा। अब आप वजू करके आए, पानी होता है ना चेहरे पे लगा हुआ है, हाथों पे, जब वजू करके आए पता चला पीले साफ चले आ रहे, नीले चले आ रहे हैं, लाल क्या हुआ भाई, क्या वजू करके आए, क्यों पानी का रंग ही ऐसा है, क्या कर, खालिक कायनात ने रंग ही नहीं रखा। तुम वजू करो, गुसल करो, इसका रंग ही नहीं है, इसी तरह सांस लो, सांस बाहर निकालो, अंदर लो, कुछ भी करो, पूरी फिजा जो है बेरंग, रंग होने में भी हिकमत और बेरंग होने में भी हिकमत, और एक रंग दूसरे रंग को मुमताज करता, यह भी देखो अल्लाह की शान। रात में सिया आसमान पर सफेद सितारे चमकते, अगर आसमान सफेद हो तब सितारे नजर आएंगे, नहीं, काला रंग सफेद रंग को उजागर कर रहा, इसीलिए अल्लाह ने उन सितारों को जाहिर करने के लिए आसमान को सिया कर दिया। अब देखो मेरी कुदरत का करिश्मा, ये सितारे देखो, सिया रंग में भी हिकमत, सफेद रंग में भी हिकमत। हारून रशीद को एक लौंडी की जरूरत थी, उसने ऐलान किया मुझे एक लौंडी चाहिए, वो दो आ गई, एक काली एक गोरी। उसने कहा भाई मुझे तो एक चाहिए, उन्होंने हाथ जोड़े, नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, बादशाह वक्त हमें रख ले, भाई मुझे एक चाहिए। उसने कहा नहीं, देखें सफेद रंग ज्यादा अच्छा है, मेरा रंग सफेद है, आप मुझे रख लें। दूसरी ने कहा नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है, आप मुझे रख लें। हारून रशीद देखने लगा, फैसला क्या करूं। उसने कहा चलो इसी बात पर दोनों गुफ्तगू करो, बहस करो कि कौन सा रंग अच्छा है, सिया या सफेद। तो जो सफेद रंग वाली थी उसने कहा देखिए अल्लाह ताला ने चांद सितारों को सफेद रखा है, सफेद रंग अच्छा। हारून ने काली की तरफ देखा, उसने कहा लेकिन ये सितारे, ये चांद जिस पर चमकते हैं वो काला, वो काला है, अगर वो भी सफेद हो तो ये सितारों की, चांद की कोई रोशनी नजर नहीं आएगी, वो मुमताज नहीं होंगे। अच्छा देखिए, दिन में सफेद सफेदी होती, हर चीज नजर आती है, सब कुछ है, सफेद रंग ज्यादा अच्छा। उसने उसकी तरफ देखा, उसने कहा जितनी भी रातें हैं मुकद्दस, वो रात में ही है, रात ही तो है, और रात सिया होती, शबे कदर हो, शबे बरात हो, शबे मेराज हो, शबे मिलाद हो, और ये सारी रातें हैं और रात काली होती है, तो काला रंग ज्यादा अच्छा। अब हारून रशीद परेशान, ये दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं। फिर जो सफेद रंग वाली थी वो बड़ी चालाक थी, उसने कहा, उसने रुख मोड़ दिया गुफ्तगू का, उसने कहा देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक सफेद था, चमकता हुआ था, इसका मतलब है सफेद रंग अच्छा है। काली ने कहा लेकिन सरकार की जुल्फें काली थी। गौरी ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमेशा सफेद लिबास पसंद करते थे। हारून ने कहा तुम क्या कहती हो, उसने कहा लेकिन कमली जो थी वो काली थी, चादर हुजूर काली पहनते थे। उसने कहा अच्छा चलो बस करो, मैं दोनों को रख लेता, ये तो मसला खत्म ही नहीं होगा। तो एक रंग दूसरे को जाहिर करता, तो रंग होने में अल्लाह की हिकमत और बेरंग होने में अल्लाह की हिकमत। पानी और हवा का रंग नहीं है, इसमें हिकमत है, और आपने देख लिया अगर रंग होता तो क्या होता, पूरी फिजा पीली नीली काली, जो भी रंग होता उसी में नजर आता। इसी तरह पानी का अगर कोई रंग होता तो आप पी रहे हैं वही नजर आ रहा, कुल्ली कर रहे हैं वही रंग नजर आ रहा, चेहरे पर डाला वजू करने के लिए वही रंग नजर आ रहा। इसलिए दोनों को बेरंग कर दिया, और पूरी कायनात में रंग, एक रंग दूसरे को मुमताज करता है, दूसरे को जाहिर करता है, और अल्लाह ताला ये अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाता है। मेरी कायनात को देखो, इन रंग बरंगी चीजों को देखो जो हमने बनाई हैं, सिर्फ फूलों को आप देख लें, हजारों लाखों बल्कि बेशुमार जिनको हम गिन भी नहीं सकते, इतने रंगों के फूल हैं। इसी तरह समंदर की मछलियां मुख्तलिफ रंगों की, और ऐसे ऐसे कलर के इंसान देखे तो हैरान रह जाए। खल्लाक आलम ने क्या जबरदस्त पेंटिंग की उनके ऊपर, और ये कलर उतरने वाला नहीं है, कलर उतरा कभी नहीं, ये अल्लाह ताला का चढ़ाया हुआ कलर। बंदे किसी पर कलर चढ़ा दें तो उतर जाएगा, खालिक कायनात का चढ़ाया हुआ कलर, बनाया हुआ, तखलीक किया हुआ, वो नहीं उतरता, वो जानवर मर जाएगा लेकिन कलर वही रहे, वो नहीं उतरेगा। तो अब पता ये चला कि जो चीजें रंगदार हैं और जो चीजें बेरंग हैं उसमें भी हिकमत। अच्छा, यही कलर जो हैं ये अमन को, जंग को, अच्छे माहौल को, बुरे माहौल को, खतरे को, हर चीज को जाहिर करते हैं। मसलन सब्ज कलर अमन की निशानी, आंखों को ठंडक देता, इसीलिए जितने भी दरख्त हैं सब सब्ज, पत्ते आप देख लें सब्ज हैं सारे, घास सब्ज, कहीं भी वो उगाओ किसी और रंग की नहीं होगी, सब्ज हो। अमन की निशानी, और सब्ज रंग जाहिर करता है कि रास्ता क्लियर है। आप देख ले सिग्नल पे, आप देख ले सुर्ख बत्ती होगी तो बढ़ोगे आगे, बढ़ जाते हो गर्दन क्या हिला रहा, सो तोड़ देते सिग्नल, फिर बाद में एक्सीडेंट होता। जब सब्ज जलेगी क्या मतलब क्लियर है, गुजर जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुंबद मुबारक सब्ज, अमन की निशानी, यही अमन लेकर आए इस दुनिया में, वरना जंग ही जंग थी, शैतानियत ही शैतानी। और सुर्ख खतरे की निशानी, खतरे की निशानी लिखा होता, डेंजरस खतरनाक, आग बुझाने वाली गाड़ी वो भी सुर्ख, जो सिलेंडर लगे होते वो भी सुर्ख, खतरे की निशानी। और सब्ज अमन की निशानी। इसी तरह सफेद, जंगों में जब सफेद झंडा ऊपर किया जाता था तो जो फरीकैन लड़ रहे होते थे समझते थे सुलह हो गई, झंडा ऊपर कर दिया भाई सुलह हो गई, अब जंग बंद कर दो। कहने का मतलब यह है कि ये मुख्तलिफ रंग जो हैं ये खासियत रखते हैं, इनके होने में हिकमत है, और ये एक दूसरे को मुमताज करते हैं, जाहिर करते हैं। अगर ये रंग ना हो तो कायनात बेरंग हो जाए। अच्छा, ये तो रंग का हाल था। अब ये देखना है कि इस आयत में जिस रंग को जिक्र किया गया है वो कौन सा रंग। ये रंग तो सारे मखलूक के हैं ना, काला है, लाल है, पीला है, सफेद है, नीला है, उदा, जितने भी रंग है ये सारे मखलूक। खालिक का रंग कौन सा है? कुरान ने कहा सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगा, किसका रंग खूबसूरत है अल्लाह के रंग से। तो अब ये समझना है कि अल्लाह का रंग है कौन सा। दुनियावी रंग उतर जाएंगे, अल्लाह का रंग बाकी रहे, दुनियावी रंग फीके पड़ जाएंगे, अल्लाह का रंग उसी तरह रहेगा जिस तरह है, कयामत तक उसी तरह रहेगा। क्या इन रंगों में से कोई रंग अल्लाह ने मुंतखिब किया कि ये मेरा रंग है? इन रंगों में से कोई रंग अल्लाह ने मुंतखिब किया नहीं। आप कहते हैं भाई सिया रंग है इसलिए कि अल्लाह का जो घर है बैतुल्लाह उस पर सिया पड़ता है, या सब्ज रंग है नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुंबद मुबारक सब्ज है, अल्लाह ने कोई रंग मुंतखिब नहीं किया, तो फिर वो सिबगतुल्लाह से मुराद है क्या, अल्लाह के रंग से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया अल्लाह के रंग से मुराद उसका दीन है, अल्लाह के रंग से मुराद उसका दीन है। दीन में इस तरह दाखिल हो जाओ और दीन की तालीमात पर इस तरह अमल करो कि देखने वाला समझ ले कि मुसलमान आ रहा, देखकर, कहने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, अब मसला यह है कि रंग चढ़ाएगा कौन? ये जो अल्लाह का रंग है, जो दीन है, ये रंग कौन चढ़ाएगा? ये अल्लाह का नबी चढ़ाता। देख लो साहबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, उनकी जिंदगी को देख लो, एक निगाह नबुवत पड़ी, जो राहजन थे वो राहवर हो गए, जो बुतपरस्त थे वो खुदा परस्त बन गए, जो अपने अखलाको किरदार की वजह से हैवानों से बदतर थे फिर वही अपने अखलाको किरदार की वजह से फरिश्तों से आला हो गए। मेरे रसूल ने ऐसा रंग चढ़ाया कि देखने वाले ने समझ लिया मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा। उन्होंने अपनी दौलत को छोड़ दिया, अपनी इमारत को छोड़ दिया, अपने ओहदे को छोड़ दिया, अपने मनसब को छोड़ दिया, सब कुछ इस्लाम के खातिर छोड़ दिया और ऐसा रंग चढ़ाया कि देखने वाले ने कहा वाकई ये मुसलमान, और ऐसा मुसलमान कि उसको देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम की तालीम। तो रंग से मुराद दीन है, दीन, अल्लाह के दीन को अपने ऊपर ऐसा गालिब कर लो। अच्छा कैसे करें? जिस तरह सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने किया। अब सहाबा की पहली जिंदगी देखिए और बाद की जिंदगी देखिए। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम से कबल जंगे ओहद में मुसलमानों ने जो जीती हुई जंग हार दी, उसका एक सबसे बड़ा सबब तो यह था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म पे अमल नहीं किया। सरकार ने फरमाया था ना, ये तीर अंदाज इस घाटी पे खड़े रहे जब तक मैं ना कहूं, इनको हटना नहीं है, क्योंकि वो घाटी ऐसी थी कि उसके पीछे से आकर हमला किया जा सकता। जंग शुरू हुई, मुसलमान जीत गए, काफिर भाग गए, माले गनीमत उठाने में लग गए, यानी यहां तक फतह हुई कि काफिर भाग गए अपना माल छोड़कर, हथियार छोड़कर। लेकिन सरकार ने क्या फरमाया था, जब तक मैं ना कहूं यहां से हटना नहीं है। वहीं सहाबा में इख्तलाफ हो गया, कुछ ने कहा कि नहीं, सरकार का हुक्म सिर्फ जंग तक था, अब जंग तो खत्म हो चुकी, हम तो जीत गए, देखो हमारे ये मुसलमान भाई माल गनीमत लूट रहे हैं, देखो काफिर भाग रहे हैं, हमें हट जाना चाहिए। कुछ ने कहा नहीं, आका ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूं तुम्हें हटना नहीं। ये इख्तलाफ हुआ, अक्सर हट गए। उधर हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अपने दस्ते के साथ दूर खड़े हुए ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे हमें तो शिकस्त हो गई, मुसलमान जीत गए, हमारे लोग भाग गए, ये माले गनीमत उठा रहे। जैसे ही उनकी निगाह इधर पड़ी घाटी पर, देखा तीरंदाज नहीं है, कहा यही मौका है, अपने दस्ते को लेकर पीछे से घूम कर आए और जो मुसलमान माले गनीमत उठाने में लगे थे पीछे से हमला किए। अब आप गौर करें, एक आदमी झुका हुआ है, माल उठा रहा है, पीछे से तलवार पड़े, कैसे अपने आप को बचाए? बस इन्होंने जो तलवार चलाई और इनके जो साथियों ने कुफार ने, 70 मुसलमान शहीद हो गए। और जो भाग रहे थे काफिर, उन्होंने कहा रहे हमारे लोगों ने पीछे से हमला किया, वो भी आगे से आ गए। अब ये बीच में, इधर से खालिद बिन वलीद, उधर से वो भागे हुए काफिर, मुसलमान बीच में, दोनों तरफ से तलवारें पड़ रही। उसी में सरकार के दंदाने मुबारक भी शहीद हुआ, काफिरों ने हमला भी किया, एक तफसील है उसकी। तो वो जंग एक तो इस वजह से मुसलमानों ने हारी, जीती हुई जंग के सरकार के हुक्म पर अमल नहीं हुआ, दूसरी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला, अच्छा ये इस्लाम से पहले का था, लेकिन जब निगाहें नबूवत और रिसालत ने उनको चुन लिया, अल्लाह ने हिदायत दे दी, ये मक्के से चले, सफर करते करते मदीने पहुंचे। सरकार ने पूछा कौन है? कहा खालिद बिन वलीद, और इनके साथ दो तीन थे। आका ने देखा, मुस्कुराए, फरमाया आज मक्के ने अपने जिगर के टुकड़े हमारी गोद में डाल दिए और फिर उनको मुसलमान किया। खालिद बिन वलीद पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अभी, मेरे मां बाप कुर्बान, अब तक जो मेरी सलाहियतें इस्लाम के खिलाफ हुई उसका क्या होगा? कहा इस्लाम से पहले जो कुछ हुआ वो सब माफ कर दिया गया, अब तुमने कलमा पढ़ लिया वो सब गुज़िश्ता गुनाह माफ। बस मेरे आका ने ऐसा रंग अपना उनके ऊपर चढ़ाया कि फिर वही खालिद बिन वलीद जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ते थे, मुसलमानों की तरफ से लड़ते थे और जिस जंग में होते थे काफिर कहते थे मुसलमानों को फतह हो। सरकार ने फरमाया ये खालिद सैफुल्लाह है, ये अल्लाह की तलवार, और वो तलवार जिस मैदान में चली काफिरों के छक्के छोड़ा था। इसी तरह हजरत सलमान फारसी, इसी तरह सुहेब रूमी, इसी तरह बिलाल हबशी, ये जितने भी थे, दीन का ऐसा रंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चढ़ाया कि उमैया ने कोड़े बरसाए फिर भी बिलाल अहद अहद कह रहे हैं, पत्थर सीने पर रख दिया फिर भी बिलाल अहद अहद कह रहे हैं, तपते हुए अंगारों पर लिटा दिया, चर्बी पिघल रही है फिर भी अहद अहद कह रहे। यह है पक्का रंग कि जो ना जुल्म से उतरे ना जबर से उतरे, ना सख्तियों से उतरे, कैसा ही उसके साथ कर दिया जाए, लेकिन जो रंग रसूलुल्लाह ने चढ़ा दिया वो मरते दम तक चढ़ा हो। सिबगतल्लाह वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा, ये अल्लाह का रंग है। तो अल्लाह के रंग से मुराद दीन, दीन। अच्छा, रंग तो नजर आता है, दीन कैसे नजर आए? रंग नजर आता है ना। अब ये रंग जो है अल्लाह का, जो दीन है, ये कैसे नजर आए? ये आपकी जाहिरी कैफियत बताएगी कि रंग चढ़ा है या नहीं चढ़ा। आपके चेहरे पर सुन्नत रसूल होगी, पता चल जाएगा रंग चढ़ गया। आपके सर पर टोपी होगी, पता चल जाएगा रंग चढ़ गया। आपके कदम मस्जिद की तरफ उठेंगे, पता चल जाएगा रंग चढ़ गया। आपकी जबान में दूसरों के लिए मिठास होगी, अखलाक होगा, मोहब्बत होगी, पता चल जाएगा रसूलुल्लाह का रंग चढ़ गया। ये सारी चीजें अमल बता देगा कि इस पर रंग चढ़ा है या नहीं चढ़ा। तो रंग किसने चढ़ाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रंग से मुराद दीन है, अल्लाह का रंग, अल्लाह का दीन। तो खालिक कायनात ये बताना चाहता है कि यहूदियों की जो रस्म थी कि जो दीन में दाखिल हुआ उसको गुसल दे दिया रंगदार पानी से, चलो भैया यहूदी हो गया। ईसाइयों ने गुसल दे दिया, ये ईसाई हो गया। जो बच्चा पैदा हुआ नौमौलूद, उसको जर्द रंग के पानी में गुसल दे दिया, ये ईसाई हो गया, ये यहूदी हो गया। अल्लाह फरमाते हैं ये रंग वो नहीं है। अल्लाह का रंग चढ़ाओ जो कभी ना उतरने वाला हो, इंसान दुनिया से चला जाए रंग ना उतरे, असल रंग वो है। ये रंग कैसे? ये तो उतर जाते, कुछ दिनों में उतर जाए, कुछ महीनों में, कुछ सालों में उतर जाए। लेकिन हकीकत यह है, जो दीन का रंग है, अगर हकीकत में आदमी उस रंग में रंग जाए, वो रंग कभी नहीं उतर सकता, कभी नहीं उतर सकता। तो इससे मुराद क्या है? रंग से मुराद दीन, सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग। अल्लाह के रंग से मुराद अल्लाह का दीन है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इताअत, फरमा बरदारी, सरकार की मोहब्बत, सरकार का अदब, सरकार की ताजीम, सरकार का एहतराम, ये है अल्लाह का रंग। और ये सहाबा में नजर आता। अब हम में और उनमें फर्क यही है, हम इस्लाम बताते हैं, वो इस्लाम दिखाते थे। वो चलते थे तो इस्लाम चलता हुआ नजर आता, वो बोलते थे इस्लाम बोलता हुआ नजर आ। हम कहते झूठ ना बोलो, खुद झूठ बोलते। गीबत ना करो, खुद करते। नमाज पढ़ो, खुद नहीं करते। दीगर काम खुद नहीं करते, दूसरों को। और वो उन पर दीन का ऐसा रंग चढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा रंग चढ़ाया कि जिस इलाके में एक सहाबी पहुंच गया पूरा इलाका मुसलमान, एक गांव में पहुंच गया पूरा गांव मुसलमान, पूरा शहर मुसलमान। क्यों? उनको देखकर मुसलमान होते थे कि जब ये ऐसे हैं तो जिन्होंने इनको बनाया है वो कैसे हो। जब इनकी तालीम ये है, जब इनका बिहेवियर ये है, जब इनका अखलाक ये है, तो फिर इनके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या होगा? ये है पक्का रंग। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि अल्लाह के रंग से मुराद दीन है। दीन पर इस्तेकामत के साथ अमल करो। हमारे अमल ऐसे हो गए कि जो गैर मुस्लिम देखे ना, वो समझे नहीं कि ये मुसलमान है, ये कौन है। क्लीन शेव, पैंट शर्ट पहने हुए, हरकतें भी वैसी, क्या पता चलेगा मुसलमान है या गैर मुस्लिम? चेहरे पर सुन्नत रसूल हो, बता दे ये अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तुम्हारे लिबास से पता चले तुम मुसलमान हो, तुम्हारी आदात और अतवार से पता चले तुम मुसलमान हो, तुम्हारे अखलाक से पता चले तुम मुसलमान हो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पड़ोस में एक यहूदी रहता था। किसी मुसलमान ने उससे कहा तुम मुसलमान हो जाओ। उसने कहा मुसलमान हो जाऊं कैसे? कहा भाई कलमा पढ़ो, इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान हो। कहा कौन सा इस्लाम, पहले मुझे यह बताओ कौन सा इस्लाम कबूल करूं? उसने कहा कौन सा क्या मतलब है, क्या दो इस्लाम है? कहा हां, मेरी नजर में दो इस्लाम। तो वो कैसे? कहा एक इस्लाम वो है जिस पर तू अमल कर रहा है और एक इस्लाम वो है जिस पर बायजीद बस्तामी अमल कर। ये दो इस्लाम है मेरी नजर में। अगर तू उस इस्लाम की बात कर रहा है जिस पर बायजीद बस्तामी अमल कर रहे हैं, मैं आज ही मुसलमान होने के लिए तैयार हूं। और अगर उस इस्लाम की बात कर रहा है जिस पर तू अमल कर रहा है, तो ऐसे इस्लाम को मैं दूर से ही सलाम करता हूं। शर्मिंदा हो गया, क्यों? मुसलमान था लेकिन आमाल मुसलमानों वाले नहीं थे, किरदार मुसलमानों वाला नहीं था, गुफ्तार मुसलमानों वाली नहीं थी। आज मुसलमानों की कैफियत यह हो गई। एक वो मुसलमान थे जिनको गैर मुस्लिम देखते थे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। हकीकत में उन पर अल्लाह का रंग चढ़ा था और चढ़ाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रंग कैसे चढ़ता है? सोहबत से चढ़ता, तालीमात से चढ़ता है, निगाह से चढ़ता है। नबी अपनी निगाह से रंग चढ़ा देता है, नबी अपनी सोहबत से रंग चढ़ा देता है, नबी अपनी तालीमात से रंग चढ़ा देता है। तो आप कहेंगे कि नबूवत का सिलसिला तो खत्म हो गया, अब कौन रंग चढ़ाएगा? हमने कहा आओ नाइबाने रसूल, अल्लाह के औली अल्लाह मौजूद है, इनकी महफिल में बैठो, ये भी अपनी निगाह से रंग चढ़ा देंगे। इनकी सोहबत से रंग चढ़ेगा, इनकी तालीमात से रंग चढ़ेगा, इनकी निगाह विलायत से रंग चढ़ेगा। जो इनकी सोहबत में बैठ जाएगा सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान बन जाएगा। तो अपने आप को दीन पर इस तरह चलाओ कि देखने वाला समझे वाकई ये मुसलमान। आज हमारी कैफियत क्या है? एक करता है सब भुगतते हैं। ग्रीन पासपोर्ट आप पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाएं कोई इज्जत नहीं। मैं सारी दुनिया में घूमता हूं, मुझे पता ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत नहीं। क्यों? पाकिस्तानी सबसे ज्यादा आगे गलत कामों। क्यों? ये मुसलमान है। अच्छा, ये अच्छा होना ये चाहिए कि मुसलमान जाए उसको देखकर समझ जाए वाकई ये रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा, ये सच्चा मुसलमान है। उसका चेहरा बता दे कि मुसलमान, उसके उसका किरदार, उसकी गुफ्तार बता दे कि मुसलमान है, तब सही मानों में मुसलमान। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने आदात और अतवार को दुरुस्त करें, अपने किरदार को दुरुस्त करें। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जैसा बताया है उसी तरह अमल करें। तो ये रंग अपने ऊपर ऐसा चढ़ाओ कि फिर ये रंग उतरे नहीं, ये कयामत तक रंग चढ़ा, मरते दम तक चढ़ा। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगा, अल्लाह फरमाता है इनसे कह दो कि हमने अल्लाह का रंग चढ़ा लिया। और किसका रंग अल्लाह के रंग से ज्यादा खूबसूरत है? वनाहनु लहू आबिदून, और हम उसी की इबादत करते। तो आज की इस नशिस का पैगाम यही है कि आप हजरात दीन की तालीमात पर इस तरह अमल करें, अपने आमालो अफालो किरदार को इस तरह दीन के साचे में ढाल लें कि कहने की जरूरत ना हो, देखने वाला समझ ले वाकई ये सच्चा मुसलमान है, ये पक्का मुसलमान। आपके कौल से भी जाहिर हो, आपके फेल से भी जाहिर हो, आपके अमल से भी जाहिर, ये है अल्लाह का रंग। आइए दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला हम सबको दीन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस्तेकामत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। इलाहुल आलमीन ये तमाम हजरात और खवातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फर, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फर, इन सब के इल्म में अमल में उम्र में बरकत अता फर, इनके रोजगार में तरक्की अता फर, इनकी जाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल लजीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।